बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद और सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम सुबह जिंदगी में आप सबको खुश आमदीद।
मैं भी सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में भी। और ये बताते चलूँ कि जी फेसबुक पे हमें मत भूला करें, facebook.com/SUT Morning Show हमारा फेसबुक एड्रेस है। हमारा एक रब्ता तो ये टेलीविजन के जरिए और दूसरा रब्ता फेसबुक के जरिए, तो उस पर कोई सवाल कोई बात आप शेयर करना चाहें हमारे से जरूर।
हमारा बराह रास्त प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर भी मुलायजा फरमा सकते हैं, जो ठीक 7:30 बजे तेहरान के वक्त के मुताबिक, 8 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक और 8:30 बजे हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। प्रोग्राम का आगाज हम लोग करेंगे एक हदीस से, जो हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से है।
बिल्कुल, तो चलते हैं हदीस मुलायजा फरमाते हैं और उसके बाद प्रोग्राम सुबह जिंदगी को आगे चलाएंगे।
सुबह हो गई और हम जबरदस्त बातें आपकी खिदमत में लेकर फिर से हाजिर हैं, और आज का प्रोग्राम हम आपको मशवरा देंगे कि जरूर देखें, कई मुफीद चीजें और एक दो मजेदार चीज, घूमने की चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ आज जो तेहरान के करीब है। मेरे ख्याल में बस एक ही दो दिन रह गए हैं उसके, अगर जिन लोगों को देखना है वो जाके देख सकते हैं और मैं अभी नहीं बताऊंगा बाद में।
चल ठीक है, ये जो सरप्राइज जो है हसन आपको देंगे, और मैं बताते चलूँ कि हमारे साथ स्टूडियो में जो है डॉक्टर सुलेल फातिमा इंशाल्लाह हमारे साथ होंगी, बच्चों के बीमारियों बच्चों के मसाइल पे बात करेंगी, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ जो है
अभी बुलाया फिर से नूरैन हैदर साहब को, रिजवी साहब को, और हम लोगों की बात कल नामुकम्मल रह गई थी और हम चाहेंगे कि आज वो जो है अपनी बात इंशाल्लाह मुकम्मल कर लें। वैसे पूरा हफ्ता भी है लेकिन
और ये
मुकम्मल हो जाए तो
बिल्कुल सही। नामुकम्मल होने वाली बात से आपकी बात याद आई मुझे कि कल जो है डॉक्टर ज़हीर अब्बास को हमने दोबारा दावत दी है कि वो उनका जो पिछले हफ्ते का मौजू था जो गंजेपन का, कि वो काफ़ी लंबा चौड़ा मौजू था, तो हमने उनको दोबारा दावत दी है कि वो और भी जो है उस पर गुफ्तगू कर सकें, और जिन लोगों ने कुछ सवाल भेजे थे वो उनके जवाब भी देंगे इंशाल्लाह, और भी कोई सवाल आपके हैं तो वो भी हमारे से ज़रूर पूछिएगा।
तो ये अच्छी चीज़ होती है बुरी चीज़ होती है गंजापन?
गंजापन अब ये दोबारा लिए है डिपेंड करता है, कुछ लोगों को बहरहाल पसंद होता है कि वो बिल्कुल जो है गंजा कर दें बालों को, छोटे कर दें बालों को, कुछ लोगों को बुरा लगता है। बहरहाल ये तो डॉक्टर ज़हीर अब्बास से पूछेंगे, देखें कि उनको क्या एहसास है कि भाई वो खुद जो हैं वो दूसरों को बता रहे हैं कि जी भाई गंजेपन से बचा जाए, लेकिन वो जो हैं वो उनके थोड़े से बाल माशाल्लाह जो है वो
गिर
बिल्कुल पेशानी बहुत 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 चौड़ी, बिल्कुल इस तरह कहा जाए तो बेहतर है।
ठीक, पीछे बात मत,
बिल्कुल सही है, बिल्कुल
इंशाल्लाह उनके सामने यही बातें होंगी। तो अभी चलते हैं हम लोग सेब साहिबा के पास, जो हम लोगों को बताएंगी नारियल
के बारे में, बिल्कुल
खवास के बारे में। हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम सुपर जिंदगी में।
नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, नारियल लेकर हम आपकी खिदमत में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? आप सब जानते हैं कि नारियल का दरख्त खूबसूरत और तनुमंद होता है, ये बगैर शाखों के सुतून की मानंद सीधा और ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े और खूबसूरत होते हैं। कदीम जमाने में ये जनूबी एशिया में लगाया जाता था, जबकि इस वक्त तमाम अस्तवाई इलाकों में नारियल के दरख्त लगे हुए हैं। बहरुल काहिल के इलाकों में लोग इस दरख्त के हर हिस्से को इस्तेमाल में लाते हैं और नारियल उनकी गजा का बुनियादी हिस्सा है। हर दरख्त में हर साल तकरीबन 50 फल निकलते हैं। नारियल जितना कच्चा होता है उसके अंदर उतना ही ज्यादा पानी होता है। नारियल की गरी में एनोटीन, ऑक्सीडाज और कैटलाज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। नारियल के पानी में बहुत से अहम एमिनो एसिड होते हैं। इसमें चर्बी या चिकनाई की मकदार बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये बदन को मोटा करता है और बदन की अंदरूनी हरारत को बढ़ाता है, मुंह को खुशबूदार बनाता है और जिगर की कमजोरी को दूर करता है। अच्छा नारियल भारी होता है और उसे हिलाने से उसके अंदर मौजूद पानी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए हमेशा ऐसा नारियल ही खरीदें जिसके अंदर पानी की आवाज आ रही हो और किसी किस्म की उसमें से बू ना हो और उसका छिलका टूटा हुआ ना हो। बाज इलाकों में बहुत अच्छी रस्म ये है कि जब मरीज को देखने जाते हैं तो लोग नारियल लेके जाते हैं, क्योंकि मैदा जो है वहीं से तमाम बीमारियां शुरू होती हैं और नारियल मैदे और जिगर का बहुत अच्छा मुहाफिज है।
नारियल ناظرین آپ سب کی خدمت میں پھر سے سلام عرض کرتا ہوں, اور جو لوگ اس وقت پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں یعنی ابھی سے دیکھنا ان لوگوں نے شروع کیا ان کی خدمت میں میں عرض کرتا چلوں کہ ہم لوگوں نے بلایا ڈاکٹر سلیل فاطمہ کو اور ان سے انشاءاللہ ہم لوگ بچوں کے بارے میں بات کریں گے. ننی منی سی جان ہوتی ہے اور ہزار مسائل ان کے ہوتے ہیں, چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کس مسئلے کے بارے میں بات کریں گے.
بالکل حسن, بہت اچھی آپ نے بات کی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو ہے مسائل حل کرنے کے لیے ہی ہم نے جو ڈاکٹر صاحب کو یہاں پر بلا لیا, تو انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. بارہ میں صرف یہ بتاتے چلوں کہ فیس بک پہ ہم لوگ آن لائن ہیں, آپ کا کوئی سوال ہو ڈاکٹر سلیل فاطمہ سے تو فوری جو ہے ہمیں جو ہے بھیجیں اور جو ہے انشاءاللہ وہ سوال جو ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں آپ؟
الحمدللہ.
ڈاکٹر صاحب بڑے عرصے بعد آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے پروگرام کو, بارہ پھر بہت 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 شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. ڈاکٹر صاحب فوبیا کا بڑا اہم موضوع, خوف بچوں میں مختلف قسم کے چیزوں سے, وہ بے شک اندھیرے کا خوف ہو یا وہ بہت سی اور چیزیں ہیں, مختلف قسم کے خوف بچوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو نکالنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے تو ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ یہ اکثر جو ہے یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں فوبیا خوف, یا کہتے ہیں کہ یہ بچہ نارمل ہے یا یہ اس میں یہ دوسروں سے فرق کرتا ہے, یہ ہیں کیا یہ ورڈز؟
سب سے پہلے تو ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ انسان اپنی زندگی میں چاہے کس بھی عمر کے فیز میں ہو وہ ضرور کچھ نہ کچھ خوف یا کوئی ایسی چیز جس سے اس کو ڈر لگتا ہے وہ فیس کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس حد تک یہ نارمل ہے.
صحیح.
اگر یہ حد اس سے تجاوز کر جائے کہ بچہ ایک عام سی چیز سے اتنا خوف زدہ ہو جائے, مثلاً کہ کوئی جگہ ہو یا کوئی انسان ہو یا جانور کا خوف ہو یا کوئی ایسی سچویشن یا ایسی سرگرمی ہو جس میں بچے کو اگر ڈالا جائے تو اس کی ڈیلی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں خلل پڑ سکتا ہے,
اثر پڑے اس کی جو نارمل طرز زندگی ہے, جو روٹین
ہے, وہ افیکٹ ہو جائے.
ٹھیک ہے,
تو اس کو ہم ایک فوبیا کا نام دیتے ہیں.
ٹھیک ہے, صحیح, یہ فوبیا ہو گیا. ٹھیک ہے, صحیح.
جی, اب اس کو ہم مختلف اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا, قسموں سے پہلے ہم یہ بات کریں کہ فوبیا جو ہے اس کو ہم اردو میں خوف کہتے ہیں, یہ وہی چیز ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس میں؟
اگر ہم فرق کی بات کریں تو اس میں انٹینسٹی کا فرق دیکھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
کہ ایک خوف ہوتا ہے اس کو اگر ہم کسی دوسری ایکٹیویٹی سے ڈائیورٹ کیا جائے, نارمل خوف کی میں بات کر رہی ہوں, تو اس کے اثرات کافی کم ہو سکتے ہیں. لیکن فوبیا میں کوئی آن اور آف کا سوئچ نہیں ہوتا, یعنی اگر ایک بچہ مثال کے طور پہ اس کو خون نکلنے کا خوف ہے, یعنی جب وہ خون کو دیکھے گا چاہے وہ کس چاہے تھوڑا سا خون ہو چاہے وہ زیادہ ہو چاہے وہ کھیل رہا ہو یا ٹی وی دیکھ رہا ہو, تو اس کا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہو سکتا اس چیز سے, یعنی وہ اس چیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے, صحیح,
وہ کبھی ریلیکس نہیں ہو پائے گا اس چیز کو دیکھ کے.
ٹھیک, اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا خوف ہوتا ہے, ایک نارمل سی چیز ہے, ان کو فوبیا کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بچے کو جو ہے وہ سانپ سے ڈر لگتا ہے اور وہ سانپ کا نام ہی سن کے جو ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے, تو یہ فوبیا ہوگا یا نہیں, یہ ایک عام چیز ہے؟
سانپ سے ڈر یہی بات ہے کہ ایک نارمل خوف میں شمار ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ ایک جان لیوا بھی ہو سکتا ہے اور انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن یہی میں واپس ریپیٹ کروں گی کہ شدت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, انٹینسٹی کیا ہے. اگر بچہ سانپ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جائے,
ٹھیک ہے,
تو یہ ایک حد سے زیادہ بڑھ گیا,
یہ فوبیا میں آ
جائے گا. یا وہ بولے کہ نہیں یہاں پہ گھر میں سانپ چل رہے ہیں,
ہاں ٹھیک ہے, اس کے ذہن میں ہے کہ کہیں سے سانپ نکل آئے گا.
جی,
اچھا,
تو یہ سب چیزیں, یعنی وہ اس کا جو خوف ہے وہ ریشنلائز نہیں ہو رہا کسی طریقے سے, وہ جسٹیفائی نہیں ہو پا رہا کہ وہ ابھی ہے یا نہیں ہے, وہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں, اس کو ہر وقت اس چیز کا خوف لگا رہے.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ نفسیاتی جو چیزیں ہیں ان کا بدن کے اوپر جو ہے اثر ہوتا ہے. سوال جو یہاں پوچھنا چاہ رہا ہوں, مطلب میرا یہ کہنے کا ہے کہ یہ فوبیا صرف ایک نفسیاتی چیز ہے, صرف ہمیں جو ہے ہمارے خیالوں میں یہ خوف ہے, یا ہمارے بدن میں بھی کوئی اثرات ہوتے ہیں یا کوئی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مشکل پیش آ جائے؟
اگر ہم وجہ کی بات کریں تو ایسے بایولوجیکل فیکٹر جس میں ہمارا برین مختلف قسم کے کیمیکل جس کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں, جی, وہ ریلیز کرتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو ریسرچ کہتی ہے کہ جس میں سیروٹونن اور ڈوپامین جو ماہرین سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں, اس کا کردار ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس سچویشن میں آ جائے بچہ تو اس کے بعد اس کے بدن میں مختلف چینجز شروع ہو جاتی ہیں, جس طرح دل کی دھڑکن جو ہم سائنز اور سمپٹمز میں بولتے ہیں
نارمل سے زیادہ. مثلا عام طور پر اگر ایک بچہ ڈرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو ڈر لگتا ہے, لیکن اس میں جو ہے بہت زیادہ آپ کو دیکھنے میں کبھی بھی ہوش ہو جانا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فوبیا جو آتا ہے ایک بچے کے اندر, ایسا ممکن ہے کہ ماں کے اندر ایک چیز وہ دیکھے اور وہ اس کو کاپی کر لے؟
جی بالکل, अगर हम ये कहें कि बच्चा इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हम बात करते हैं कि घर के अंदर किस टाइप का माहौल है, बच्चा देखता है कि उसकी माँ खून को देख के बहुत घबरा जाती है, बच्चा ये परसीव करता है कि खून बहुत मतलब जरा सा भी हो तो वो जानलेवा हो सकता है,
सही है,
तो फिर बच्चा उसको लॉन्ग टर्म में समझता है कि नहीं इससे तो बस अब डर लगता है, अब इसको कभी नहीं निकलना चाहिए खून।
ठीक, सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। आपने जो है फोबिया के बारे में, खौफ के बारे में जो है हमारे नाज़रीन को बताया। डॉक्टर सुलेल फातिमा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और बच्चों में खौफ मुख्तलिफ समय के खौफ नॉर्मल सतह पर हो तो मसला नहीं है, लेकिन वो एक नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए और उसके नतीजे जो हैं वो बुरे हों, अजीब हों, तो उसको जो है हम लोग फोबिया कहते हैं। डॉक्टर सुलेल फातिमा से गुफ्तगू आज जारी रहेगी। यहाँ पर चलेंगे हसन के पास, देखते हैं हसन कहाँ पर लेके जा रहे
हैं। हम ले जा रहे हैं जी खुर्रम भाई, बहुत ही अचानक खुश हो गए तो आप लोग इस्फहान के बारे में एक फोटो क्लिप देखिएगा, उसके बाद हम आपकी खिदमत में लौटेंगे। बहुत खूबसूरत शहर है जी इस्फहान, शहर के मनाजिर आपने मुलाहिजा फरमाए, वक्त जाया किए बगैर चलते हैं डॉक्टर सुलेल फातिमा और खुर्रम अली गर्दीजी के पास।
बिल्कुल हसन, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सुलेल फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, फोबिया के बारे में, खौफ बच्चों में जो खौफ होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, और अगर उनकी शिद्दत बढ़ जाए उसके बारे में डॉक्टर साहब से बात हुई। डॉक्टर साहब, फोबिया की इकसाम भी हैं?
बिल्कुल, हम फोबिया को एक तो खसूसी फोबिया होते हैं जिसके अंदर किसी चीज़ से या किसी जानवर से, कोई सिचुएशन से, किसी एक्टिविटी से बच्चा बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है, जिसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया ने बंद जगहों का फोबिया होता है, बच्चा एलिवेटर में नहीं ट्रैवल करना पसंद करता,
लिफ्ट वगैरह में या टॉयलेट के लॉक नहीं लगाते,
जी बिल्कुल बंद हो जाए, स्पेशली ऐसी जगहों पर ट्रेन में वॉशरूम जाना पसंद नहीं करता कि बिल्कुल बंद हो जाता है वॉशरूम। इसके अलावा बच्चों को जानवरों का फोबिया होता है जिसको हम ज़ू फोबिया का नाम देते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को शदीद लाइटनिंग, बिजली गरजने से भी बहुत डर लगता है।
अच्छा, उसकी आवाज से या खुद बिजली रोशनी से?
पहले आवाज जब सुनते हैं उसके बाद से ही, देखने से ज्यादा उनको आवाज से ज्यादा डर लगता है।
ठीक है, सही है।
उसके अलावा हम मकड़ियों का एक खौफ होता है बच्चों के अंदर, कभी अक्सर ऐसा भी देखा गया कि बच्चों को ऐसा लग रहा था मकड़ी चल रही है जमीन।
अच्छा, ठीक है, मतलब एहसास हो रहा होता है,
यानी असली में उसकी उस वक्त मौजूदगी नहीं होती उस चीज की, लेकिन वो फील कर रहे होते हैं कि ऐसा हो रहा है।
ठीक है,
इसके अलावा हीमोफोबिया जिसके अंदर बच्चा खून निकलने का या खून को देख के बहुत डर जाता है।
ठीक है, सही।
बीमार होने का बच्चों में फोबिया होता है बहुत ज्यादा कि ये करेंगे बीमार हो जाएंगे, पैथोफोबिया जिसको हम कहते हैं।
ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ पूछूं, जैसे आपने कहा बीमार होने का वो फोबिया होता है, ये कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं कि जैसे मैंने पहले मैं पूछा कि माँ के अंदर ये अगर ये चीज़ देखा है बच्चा तो वो कॉपी कर लेता है, उसके अलावा कुछ फोबिया मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप इसका इसमें हकीकत है या नहीं आप बताइएगा, कि अगर बच्चे को आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ से मना करें कि ये बुरा है, ये गलत है, ये गलत है, मिसाल के तौर पर वो जो है दोपहर के टाइम बाहर खेलने जाता है तो आप उसको बोलेंगे ये दोपहर के टाइम जो है गलत है, नहीं आपने बाहर जाना, नहीं आपने, इससे भी कोई फोबिया ईजाद होने का खदशा होता है?
इससे हम इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि जब माँ बाप बच्चों को ज्यादा पैम्पर करते हैं या किसी चीज के लिए बहुत अवेयर, नहीं बोलूंगी खौफ ज्यादा कर देते हैं।
हाँ, बिल्कुल सही,
यानी अवेयर करना एक अच्छी चीज है अपने बच्चों को, लेकिन किसी चीज के लिए इतना खौफ ज्यादा करना, अभी ये अगर गंदा पानी पियोगे बीमार हो जाओगे, वो पानी भी साफ हो उसको फिर भी लगेगा कि हाँ वो बीमार है पानी के अंदर।
अच्छा, तो ये मुमकिन है,
यानी एक बीच में लिमिटेशन लाइन होनी चाहिए खौफ ज्यादा करने में और बच्चे को अवेयर करने में।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा दिलचस्प आपने नुक्ता उठा लिया, अवेयर करना यानी बताना एक चीज के बारे में जो है, इन्फॉर्मेशन देना बच्चे को कि बताना कि ये ऐसा है ये ऐसा, और दूसरा उसको डराना। थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ से बात को थोड़ा उस तरफ लेके जाते हैं, ये अक्सर माँ बाप शुरू से ही डराना शुरू कर देते हैं बच्चों को, उन्होंने पता नहीं ये क्यों है हमारे माशरे में ये चीज, कि बजाय इसके कि बच्चे को आराम से बिठा के उसको समझाया जाए कि ये इसके फायदे हैं, ये इसके नुकसान आते हैं, लेकिन हम जो है पहली बात ही जो शुरू करते हैं वो ये करते हैं कि ये किया तो यूं हो जाएगा, ये क्यों है हमारे माशरे में ये चीज?
हमारा माशरा शॉर्टकट, एक तो इतने बिजी हो गए हैं हमारे, अब तो पेरेंट्स दोनों ही घर में वर्किंग होते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि जो काम जल्दी हो जाए, बच्चा अगर डर के कोई चीज से टेम्पररी तो बैक ऑफ कर लेता है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसकी मेमोरी में कोई अच्छे असरात नहीं
पड़ते। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये क्या मसलन माँ बाप को कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत है या क्या, कोई आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, जो ऐसे माँ बाप अक्सर जो है ये डराते हैं बच्चों को?
अवेयरनेस में ये कहूंगी किसी भी चीज के लिए, अगर आपके बच्चे में कोई खराबी है तो उसका आप 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, इसलिए कि हर चीज में आज अगर हम देखें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फैमिली फैक्टर्स, घर का माहौल, ये सब शुमार होता है। एक बहुत ज्यादा फेमस एग्जाम्पल हम इस तरह लें कि बच्चा खाना नहीं खाता,
ठीक है,
अक्सर मैंने माओं को देखा है, बच्चों को बोलते हैं खाना नहीं खाओगे तो एम्बुलेंस आएगी, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, कड़वी सी दवाई मिलेगी, इसका क्या मतलब है? इसके बाद जब बच्चा बीमार होगा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपके साथ डॉक्टर के पास चलेगा?
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, और कोई है टाइप इसकी अगर आप जिक्र करना चाहें?
इसके अंदर एक सबसे ज्यादा जो बड़ों में भी देखा जाता है और बच्चों में देखा जाता है, उसको हम सोशल फोबिया कहते हैं।
अच्छा।
इसके अंदर बच्चे कतराते हैं नए लोगों से मिलने के लिए, वो कोशिश करते हैं कि हद जिस हद तक हो सके अपने जिनको वो जानते हैं, जिनसे वो मानूस हो गए, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। इसका भी एक कॉज ये भी हो सकता है कि हम बच्चों को बहुत स्टार्टिंग से बोल रहे थे स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करें, स्ट्रेंजर्स से ये ना लें, दुरुस्त बात है, लेकिन उसको इतना खौफ ज्यादा कर दें कि वो फिर अपनी किसी मुश्किल में आकर भी किसी दूसरे से रब्ता ना कर सके, तो ये गलत है।
हाँ, ये गलत है, यानी अगर वो परेशान भी हैं तो बैठे रहेंगे, वो किसी को कहेंगे नहीं कि हमें मदद की जरूरत है।
जी सही। इससे इनकी स्कूल की लाइफ पे भी असर होता है। अच्छा। बच्चा स्कूल में आगे नहीं आता, मुताला करने के लिए, रीडिंग करने के लिए भी नहीं खड़ा हो पाता।
अच्छा,
नाखून कतराता है स्कूल में देखा जाए तो, या फिर बहुत खामोश सा रहता है, नए दोस्त नहीं बना पाता, ये सब चीज। और एक और जो इसमें टाइप देखी जाती है उसको हम अगोराफोबिया कहते हैं। उसके अंदर बच्चा बस समझता है कि उसका घर सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव है उसके लिए, यानी बाहर की जितनी भी चीजें उससे उसको डर लगता है। जनरलाइज्ड टर्म में अगर हम देखा जाए, यानी बच्चा घर में टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, इवन बाहर ग्राउंड्स में खेलकूद भी करना पसंद नहीं करता, पार्क में जाना पसंद नहीं करता, बस घर के अंदर उसको रहना अच्छा लगता है।
ठीक है सर, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने जो है एग्जाम भी बता दी हमें, और जो है इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रखेंगे, मजीद गुफ्तगू इस टॉपिक पर करेंगे, लेकिन अभी चलेंगे हसन के पास और देखते हैं हसन हमें कहां लेके जाएंगे।
मैं एक नुक्ते का इजाफा करना चाह रहा था, और वो ये था कि आम हालात में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर चंद बच्चे बैठे, वाकई यानी अगर तारीफ करनी हो तो करनी चाहिए, अगर मिसाल के तौर पर कोई वहाँ पे यूरोपी कोई बच्चा होगा वो चुप बैठा होगा, हालांकि वो अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश इन सारे ममालिक के जो होते हैं, अरब ममालिक के, वो चीख रहे होंगे बच्चे बेकार में, पता नहीं क्यों चीख रहे होंगे, वो चीख रहे होते हैं, दहाड़ रहे होते हैं, वो एक अजीब सूरत हाल होती है, और सब मुड़ मुड़ के इन्हीं लोगों को देख रहे होते हैं।
सही है, ठीक।
अब ये सारी चीजें भी हैं कि भाई मेरे ख्याल में वही वो सबसे आसान रास्ता जो हमारे वालदैन चुनते हैं, हमारे ना कह दें वो मालूम और घर जाने दें, वो दूसरा मसला ही दूसरा हो जाएगा, चलें छोड़िए सब मसाइल को, हमारे फंसने का इम्कान है। चलते हैं एक वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद इस्फहानी साहब की आवाज में ये तराना सुना, चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया हसन, और जी हमारे साथ डॉक्टर सुलेल फातिमा स्टूडियो में मौजूद है नाज़रीन, और बच्चों में खौफ फोबिया के बारे में हमारी गुफ्तगू चल रही है। आपको कोई सवाल हो तो फौरी तौर पे जो है फेसबुक पे हमें कमेंट कर दें, ताकि हम जो डॉक्टर साहब से वो सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजूहात क्या हैं फोबिया की बच्चों में?
एक फैक्टर तो ये है, मैंने जिस तरह न्यूरो ट्रांसमीटर्स का जिक्र किया, यानी हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर जिसको हम कहते हैं, ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो एंजाइटी और खौफ बच्चे में पैदा कर सकते हैं।
ठीक है।
इसके अलावा इसका ताल्लुक जेनेटिक्स से भी होता है कि अगर माँ बाप में है तो बच्चों में आने का
अंदेशा।
ये भी देखा जाता है जिस तरह मैंने मेंशन किया कि बच्चा घर में सबसे ज्यादा उसका पहला एनवायरनमेंट जिससे वो एक्सपोज होता है वो होता है घर। घर में वो देखता है एक सिचुएशन है जिसमें माँ बाप का उसके साथ उस सिचुएशन के साथ कैसा रवैया है।
ठीक है।
अगर बहुत ज्यादा संगीन है तो वो उसको समझते कि बहुत ज्यादा ये खौफनाक मसला है और जानलेवा हो सकता है वगैरह।
ठीक है।
इसके अलावा माँ बाप का और असतजा का बच्चों के साथ किस तरीके का रवैया है, अक्सर देखा जाता है जिस तरह माँ बाप कहते हैं बच्चों को कि अगर मुझे तंग किया तो मैं बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी, अगर मुझे ये किया, यानी किसी ना किसी तरीके से बच्चों को खौफ ज्यादा किया जाए।
ठीक है।
इसके अलावा स्कूल में बच्चों को अगर डीमोटिवेट किया जाता है, कि अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है तो उसको ऊपर लाने के बजाय उनको आगे भी ना बिठाएं और पीछे बिठाएं और डांटे भी इस तरीके से।
सही, यानी अक्सर ये चीज देखने मिलती है कि उस्ताद जो है वो बजाय इसके कि जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई में या कॉन्फिडेंस में उनको उनको मदद करें, वो उनको जो है बिल्कुल छोड़ देते हैं, बस वो जो लाइट लड़के बच्चे हैं जो ज्यादा तेज बच्चे हैं उनको उनका हाथ पकड़ के जो है उन्हीं के साथ बात की जाती है, उन्हीं साथ सवालों के जवाब दिए जाते हैं, ये बारे गलत चीज है। जी,
यानी ये बच्चे फिर फेवरेटिज्म अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अगर हम स्कूल लेवल पे भी देखें तो इससे बच्चों के दिमाग पे नेगेटिव असर पड़ सकते हैं।
बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने जो है हमें बता दी कि क्या वजूहात हो सकती हैं बच्चे में जो है फोबिया की। इसके अलावा क्या एक चीज मसलन माँ बाप अभी अगर हमारी जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कैसे पता चले कि उनके बच्चे के अंदर फोबिया है, एक आम नॉर्मल खौफ नहीं है, ये फोबिया की निशानी है?
सबसे पहली निशानी तो ये है कि वो खौफ एक परसिस्टेंट एक लंबे पीरियड यानी 6 महीने फॉर इंस्टेंस रहेगा, यानी उसके अंदर जब भी उसको उस चीज का एक्सपोजर मिलेगा बच्चा खौफजदा हो जाएगा।
ठीक है, सही।
एक्सपोजर ना भी हो तो बच्चा इमेजिन करेगा उस चीजों को कि ये उसके साथ हो रहा है, मसलन कि यहाँ सांप चल रहा है और उसको डर लग रहा है वगैरह, एक चीज तो ये होगी। इसके अलावा उस चीज को देख के वो जो रिएक्शन करेगा उससे आप फौरन पहचान सकते हैं कि ये एक नॉर्मल खौफ वाला रिएक्शन नहीं है। बहुत ज्यादा अगर असली में सामने सांप या कोई जानवर आ जाए या मकड़ी आ जाए या बादल की गरजने की आवाज है तो बच्चा डर के एक जगह बैठ जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर विद टाइम वो भूल जाएगा, उसका बार बार जिक्र नहीं करेगा। लेकिन जो एक फोबिक बच्चा होगा उसको वो उस चीज से कभी रिलैक्स ही नहीं हो पाएगा, उसके
स्ट्रेस है उसके जहन में।
जी बिल्कुल,
ठीक है, सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू को हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे और जो है बड़े अहम नुकात पे आप जो है इशारा करेंगे, थोड़ा सा माहौल को तब्दील करेंगे। चलते हैं हसन के पास और देखते हैं हसन जो है हमारे लिए हमारे नाजरीन के लिए जो है क्या क्या चीजें लेके आए।
हम एक दो चीजें लेकर आए हैं और यकीनन आपके लिए मुफीद साबित होंगी। और बहरहाल बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, अगर आप देखें तरक्की कर रही है टेक्नोलॉजी, और इस सिलसिले में जो काम हो रहा है दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में वो बहुत ज़्यादा अहम है। अभी मिसाल के तौर पर सूरज बहुत ही खूबसूरत तरीके से कार्टूनों में बनाया जाता है, एक मुस्कुराती हुई शक्ल और ये सब, लेकिन हकीकी शक्ल उसकी ये है। और जब आप धूप में जाएंगे खुसूसन गर्मियों में तो इसकी यही शक्ल फिर सामने आती है, जब आपको हो जाता है सनबर्न बहुत बुरी तरह या अजीब सी हालत होने लगती है, गर्मी पसीना और अगर ह्यूमिडिटी हो रुतूबत हो हवा में तो उसमें एक अजीब कैफियत सी होने लगती है। बचा कैसे जाए, एक बहुत ही अहम काम किया गया है स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड में, वहाँ पे 2-3 प्रोफेसर्स ने मिलकर एक बहुत ही अहम काम किया है और वो एक ख़ास किस्म के उन्होंने कलाई पे बांधने के लिए स्ट्रैप्स बनाए। इनका काम यह है कि ये जब सूरज की यूवी इनके ऊपर पड़ती है तो अंदर इनमें केमिकल तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से इसका रंग तब्दील हो जाता है। रंग तब्दील होने का मतलब ये है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा यूवी आपके जिल्द पर पड़ रहा है और वक्त है कि या आप किसी साए में छाँव में चले जाएं या आप चले जाएं कोई शर्ट पहन लें मुनासिब यानी किस्म की शर्ट आप पहन लें या छतरी ले लें या क्रीम लगा लें। क्रीम लगाना तो खैर आपको आम हालात में भी चाहिए, यानी हत्ता सर्दियों में न, यानी अगर गर्मियों के लिए आप सिर्फ मुनहसर कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के जो यानी कह सकते हैं सनस्क्रीन होते हैं वो आप अपने हक़ में काफ़ी हद तक जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ दिखाती है कि अगर हम लोग सही तौर से नहीं समझ पाते तो ऐसे लोग हैं जो हम लोगों की फिक्र में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को दूर किया जाए। ये स्ट्रैप्स जो हैं ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल के यानी काबिल होते हैं, लेकिन हर पैक में जैसा कि इससे पहले की तस्वीर में हमने आपको दिखाया तकरीबन 6 से 7 स्ट्रैप्स होते हैं एक पैक में और इनकी कीमत जो बताई जा रही है फिलहाल $12 है। अभी मुनासिब हो जाएगी, बहरहाल चीन में जब बनने लगेगा सस्ता हो जाएगा। चलते हैं उस वक्त तक इंतजार करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, एक बहुत ही खूबसूरत सा मंजर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारे साथ ही जूम भी कर दें तो और उसका उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। तेहरान के करीब से मतलब बहरहाल 2 घंटे भी बाज़ वक़्त करीब ही होते हैं क्योंकि 2 घंटे लगते हैं पहुँचने में वहाँ पर। 40 किलोमीटर आप मगरिब की तरफ जाएंगे, एक शहर है करज और बहुत ही अहम शहर है क्योंकि सेटेलाइट सिटीज़ जिन्हें कहा जाता है जो कह सकते हैं तेहरान के करीब हैं उनमें उसका शुमार है, लेकिन अब खुद एक सूबे का मरकज भी बन चुका है। वहाँ से आप जाएंगे चालूस रोड पर, बहुत खूबसूरत सड़क है। 60 किलोमीटर जब उसके ऊपर आगे जाएंगे यहाँ तक हो गए 100 किलोमीटर, बहुत खूबसूरत सड़क है लेकिन वहाँ पे स्पीड 60 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। जब आप 60 किलोमीटर आगे जाएंगे 61 किलोमीटर वहाँ पर आप पहुँचेंगे गजसर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और वहाँ पर क्या होता है कि हर साल तकरीबन 20 मई से लेकर 10 अप्रैल तक एक प्रोग्राम होता है और वहाँ पर गुल लाला लगाए जाते हैं, कहा जाता है तकरीबन 50,000 से 70,000 गुल लाला लगाए जाते हैं और उसका अपना एक ख़ास खूबसूरत मंज़र हो जाता है मुख्तलिफ रंगों में। और जैसा कि आप देख रहे हैं हालांकि दो चारों तरफ पहाड़ हैं और बज़ाहिर हल्की सर्दी है लेकिन मुनासिब तरीन जगह होती है इन फूलों को लगाने के लिए, तो ये 20 दिन होते हैं देखने के लिए और इसी में अगर आपने देख लिया तो ठीक है, वरना थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको जब आप पहुंचेंगे वहाँ पे तो सब सूख चुके होंगे। लेकिन अगर बिल्कुल शुरू में आप चले गए तो आपको बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ताज़ा गुले लाला ट्यूलिप्स आपको दिखाई देंगे और ये जो है ज़्यादा देर, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ज़्यादा देर भी आपको नहीं लगेगी पहुँचने में वहाँ पर, 2 दो घंटे से सवा घंटे यानी ढाई घंटे के बीच आपके स्पीड के बिना पर कितनी स्पीड से आप चला रहे हैं आप पहुंच सकते हैं वहां पर, रुकते रुकाते सब जाते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत मनाजिर रास्ते में भी हैं। चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया हसन। हसन अभी जा सकते हैं हम
मेरे ख्याल में बस एक दो दिन बचे हैं।
एक दो दिन बचे हैं बिल्कुल। भारत में पिछले साल गया था, बहुत ही खूबसूरत जगह जो आपने तस्वीर ली, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो है अपनी खुद ली हुई तस्वीरें जो है
जो भी हमने मिली नहीं हमें कोई ढंग की अपनी हमने देखा
बिल्कुल नहीं। भारत बहुत अच्छी है। ये बताते चलो कि हसन जो है वो फोटोग्राफी के भी बहुत शौकीन है और इनके पास जो है एक बड़ा हैवी किस्म का कैमरा है जो मुझे बड़ा शौक है उस तरह कैमरे लेने का, लेकिन ये बारह फैलन जो है हसन के पास
शौक है मुझे फोटोग्राफी का
जी बिल्कुल। बहुत अच्छा, ठीक है जी। डॉक्टर सुलेख फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमारी उनके साथ गुफ्तगू रही खौफ के बारे में, फोबिया के बारे में बच्चों में, और डॉक्टर साहब ने बड़ी मुफीद नुकात जो है वो हमारी खिदमत में हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश किए। और जो नाज़रीन अभी तक प्रोग्राम नहीं देख पाए थे वो जो है हमारे यूट्यूब पे या जैसे कल हसन ने कहा था कि डेली मोशन पे भी हमने अब जो है अपनी वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी क्योंकि यूट्यूब जो है कुछ ममालिक में बंद है, और उसके अलावा फेसबुक पे भी और urdu.srtv.ir की जो वेबसाइट है उस पे भी आपको हमारी वीडियोस जो है मिल जाएंगी और आप गुफ्तगू जो है मुलाहिजा फरमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैनेजमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ऐसी बीमारियों के लिए, इलाज ज्यादा नहीं कहा जाता लेकिन मैनेज कैसे इस बीमारी को मैनेज किया जाए?
मैनेजमेंट घर से शुरू की जा सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चे के जो सबसे करीब तरीन रिश्ते होते हैं वो माँ बाप और असातिज़ा होते हैं,
ठीक है,
तो उनका और उनके साथ बच्चा बहुत एक्सपेक्ट करता है कॉन्शियसली भी और सबकॉन्शियसली भी कि ये चीज़ होगी तो इस तरीके से चीज़ हैंडल होगी। अच्छा, घर में अगर बच्चा देखता है कि माहौल ऐसा है कि आपस में माँ बाप के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं है या फिर माँ बाप का बच्चों के साथ अच्छा रवैया नहीं है, तो बच्चा ऐसे जिस तरह सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं कि बच्चों को खौफ होता है कि कहीं माँ बाप छोड़ के चले जाएंगे या माँ बाप अलहदा हो जाएंगे, तो इस चीज़ पे एम्फोसाइज करना चाहिए कि घर में पॉजिटिव माहौल को कायम किया जाए।
ठीक है।
इसके अलावा असातिज़ा का रोल ये है कि बच्चों को जिस तरह मैंने मैंशन किया कि डीमोटिवेट ना किया जाए, उनको उनमें जो भी स्किल्स है, हर बच्चा अपनी जगह एक माहिर होता है, अब एक स्पेसिफिक चीज में वो माहिर होता है, उस स्किल्स को उभारा जाए
बजाय इसके कि जो चीज आपके जहन में उसको उभारा जाए और उसमें जो है बेचारा बच्चा भी फंस जाए।
जी बिल्कुल। इसके अलावा बच्चों पे बिला वजह का प्रेशर किसी भी किस्म का ना डाला जाए। अगर बच्चा मैथ्स में वीक है, अगर साइंस में वीक है, तो उसको उस तरीके के स्टैंडर्ड्स के साथ को कदम ब कदम चलने की गाइडलाइंस दी जाए, ना कि बच्चे को उन बच्चों के साथ बिठा के जो कि बहुत अच्छे हैं और फिर एक तरीके का बच्चा फील करता है कि उसको एम्बैरेसमेंट एक फील होती है और वो फिर कभी सीख नहीं सकता,
तो
ये असातिज़ा का किरदार हो सकता है।
डॉक्टर साहब जी, और भी कोई है बात?
इसके अलावा बस एक पॉइंट ये है कि मैं पहले मेंशन किया कि बच्चे को अवेयर करना और खौफजदा करने में हमेशा एक लिमिट लाइन होनी चाहिए।
बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा ही मुफीद मौजू था। मुझे खुद जो है बहुत सी चीजें जो हैं अभी आपसे सुनने को मिली जो मेरे लिए बड़ी जो है नई थी। और एक जो नुकता जैसे डॉक्टर साहब ने आखिरी में दोबारा भी कहा कि बच्चे को खौफ जो है वो धमकी बजाय इसके कि उसको धमकी दे के मना किया जाए इस चीज से, उसको अगर समझाया जाए तो बच्चों में बहरहाल इतना स्ट्रांग होता है उनका जहन और इतना आईक्यू उनका होता है कि वो समझ पाए बात बहरहाल बात को। और बहरहाल जो है ये हमारी आज की गुफ्तगू थी डॉक्टर सुलेख फातिमा के साथ, और गुफ्तगू के सेगमेंट का वक्त जो है वो खत्म हो गया। हम जो है डॉक्टर साहब से इजाजत चाहते हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और इतने मुहिम अहम टॉपिक पर आपने जो है गुफ्तगू की। चलते हैं हसन,
मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहिबा का। और नाज़रीन, हम लोग एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इंशाल्लाह मौलाना नूरैन हैदर साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नाज़रीन आपकी खिदमत में फिर से हम सलाम अर्ज करते हैं। जो लोग प्रोग्राम इस वक्त उन्होंने देखना शुरू किया है उन लोगों यानी सलाम अर्ज करते हैं, वरना बाकी लोग तो देख ही रहे थे।
बिल्कुल सही।
और हमारा राबता हो गया या नहीं?
राबता जो है हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा। एक सवाल जो मेरे जहन में आया था वो ये कि बड़ी दिलचस्प बात है कि जब कभी किसी को कहा जाता है ना कि जी आप इस पोस्ट पे आके बैठे और आप ये पोस्ट संभालें और ये ओहदा संभालें और ये जो आप ये काम है ये आपका काम है, आपने इस शहर को संभालना है, ये पुलिस डिपार्टमेंट को संभालना है, पोस्ट का डिपार्टमेंट, बहुत से लोग जो है खुश होते हैं कि जी ओहदा मिल गया, कुछ लोग जो है परेशान होते हैं। आपके ख्याल में परेशान होना है, जरूरत है उसकी या नहीं? परेशान
तो होना यकीनन जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर डाल दी जाती है। जो लोग खुश होते हैं हो सकता है दो सूरत है, अगर यानी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली उनको देखा जाए और बहुत ही यानी अच्छी नजरों से देखा जाए और मुस्बत नजरों से देखा जाए, वो ये है कि उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ बैठे।
सही है, ठीक
है, ये भी यकीनन नुकसानदेह उनके लिए और जिस इदारे या जिस शहर या जिस मुल्क के वो सरबराह बने उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और अगर उनको पता है और खुश हो रहे हैं तो इनके इसका मतलब ये है कि उनके अजाइम कुछ और हैं,
बिल्कुल,
और वो कुछ और ही प्लानिंग करके बैठे।
बिल्कुल, ये दूसरी जो कैटेगरी में लोग हैं इनके बारे में तो यानी बात की नहीं जा सकती, क्योंकि ये जब एक शख्स को पता है कि मैंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतने बड़े इदारे को मैंने कंट्रोल करना है, मुल्क को कंट्रोल करना है, शहर को कंट्रोल करना है, महल्ले को कंट्रोल करना है, और उसके बावजूद पता होते हुए बावजूद भी लोग जो हैं वो उनको कोई परेशानी से मतलब हमारा ये है कि एक निगरान होना, परेशान होना कि भाई ये जो है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरे कंधों पे आके गिर पड़ी है तो मैं कैसे इसको चला पाऊंगा, और दुआ के लिए हाथ उठाना कि भाई अल्लाह ताला से दुआ करना कि मेरी मदद फरमाए कि मैं इस ये जो क्या कह सकते हैं जो
जिम्मेदारी जो मुझे हमें सौंपी गई है वो सही तौर से यानी उसे बिल्कुल निभा सके, और अगर कोई जैसे बहुत ही अहम मकसद है तो उस तक पहुंच सके।
बिल्कुल सही,
लेकिन होता बहुत ही कम लीडर्स के साथ ये, लीडर्स से मतलब ही नहीं होता, एक हो सकता है ये एक वालिद हो, एक घर के लीडर।
बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि मोहल्ले का एक जो है वो नाजिम जैसे बने थे या मसलन जो शहर के हैं मोहल्ले के, बिल्कुल देखें हर शख्स को ये बड़ी अहम चीज आपने हसन बोल दी इत्तेफाकन कि जरूरी नहीं है कि आप एक मुल्क के सरबराह हों तभी आपको जो है परेशान होना है कि मुल्क को कैसे चलाना है। बिल्कुल जो आपने बात की घर का सरबराह जो है, एक घर का रहनुमा जो है, जो उसने रहनुमाई करनी है अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने जो उसके घर में जो जितने लोग भी रह रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो खुद ही जो है वो करप्ट होगा, खुद ही जो है वो उसको पता नहीं है कि भाई जिंदगी क्या है, कैसे मैंने चलानी है, तो वो जो अपने नीचे जो या फिर उसके आसपास के जो लोग हैं उनको कैसे जो है उनको रहनुमाई कर सकते हैं, कैसे उनकी राहबरी कर सकता है।
यकीनन ऐसे ही है, और इसमें एक और नुक्ता भी हमारे साथी है, वैसे मैं बताता चलूं नाज़रीन को, कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना साहब से राब्ता कर लें, इस वक्त
बिल्कुल
मुमकिन नहीं हो सका है, तो उनका उनकी कोशिशें जारी हैं। इसके बारे में अगर आपका कोई ख्याल हो तो हम मुंतजर हैं अपने फेसबुक के ऊपर, यहाँ पर उसके लिए वसीला हम लोगों ने फराहम किया। खुर्रम, एक चीज जो हम जरूर इस सिलसिले में बताना चाहेंगे वो ये है कि लीडरशिप में ये यकीनन हम लोगों को देखना चाहिए, जो यानी एक रहबर को अगर हम चुन रहे हैं या एक रहबर का इंतखाब कर रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं कि उसमें कैसी सलाहियत। तो अभी हाल में ही कोई बता रहा था कि उनकी बिल्डिंग में तकरीबन 20-20 मेरे ख्याल में अपार्टमेंट्स उसमें होंगे, और वहाँ पर जिसको मुकर्रर किया गया था कि भाई आप जो हैं ये सारी चीज़ें यहाँ की संभालें, चेक करते रहें, मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेने होते हैं, चार्ज लेना होता है उसका, और मेंटेनेंस वगैरह का के पैसे लेने होते हैं, तो उसके लिए उनको मुकर्रर किया।
ठीक है,
वो मालूम कई महीने के अंदर माफ कीजिएगा तो वो पैसे कम पड़ने लगे।
ओहो हो,
मालूम वो उसी में अपनी हरकतें करने लगे थे।
ओहो हो,
उन्हीं पैसों में जो बहुत ही महदूद पैसे होते हैं, और आज नहीं तो कल पता चल जाएगा पैसे उसमें कम है,
बिल्कुल सही,
उसमें भी उन्होंने अपनी हरकत कर दी और बिल्डिंग से चले गए, और यानी उस पर उन्होंने कहा भी कि अगर हिम्मत है तो आके ले लो।
सही, तो अफसोस की बात है,
जो इस सतह पर इतना गलत आदमी साबित हो सकता है
तो
ऊंची सतह पे कैसा। तो हम लोगों को अगर इलेक्शंस हम लोगों के ममालिक में हो रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पर कोई भी इंतखाबात हो रहे हैं, हर सतह के होते हैं, चाहे वो म्यूनिसपैलिटी के होते हैं, बाज़ जगहों पर सिटी काउंसिल के होते हैं, या प्रेसिडेंट और लीडर के होते हैं, उसमें हम लोगों को यही देखनी चाहिए कि भाई इस दफा तो छोड़ दो, चलो इसने छोटी मोटी चोरियां की हैं,
सही है,
बड़ा बड़ी बड़े ओहदे पे जब पहुंच जाएगा तो कुछ करे? नहीं करेगा।
बिल्कुल, जाहिर बात है इंसान की गलत जो इंसान की शख्सियत है उसको इतनी जल्दी से तब्दील नहीं किया जा सकता। जाहिर बात है जो आपको अगर आप देखते हैं कि एक शख्स जो है वो घर में घर को इस तरह चला रहा है तो कल को बाहर भी। लेकिन बहरहाल ये बताते चलूं कि सिर्फ सियासत का मैदान ही नहीं है, सियासत के मैदान के अलावा भी हजार जगह हैं जहां पर आपको ये देखना है कि आपने किस शख्स को अपना आइडियल बनाना है, किस शख्स के पीछे आप चल रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। हसन चलें एक छोटा सा वक्फा ले लें।
बिल्कुल
जी नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम सुबह जिंदगी को देखते रहिएगा।
जी नाज़रीन, आप लोग मुलायजा फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह जिंदगी, और बस आखिरी चंद मिनट है, रब्ता हमारा मुमकिन नहीं हो सका अपने मौलाना साहब से, मौलाना नूरैन हैदर साहब से, और बहरहाल आपसे माजरत खाए इस सिलसिले में, यकीन है उनसे बहुत बेहतर बातें हो सकती थी हम लोगों की। एक चीज मैं बताता चलूँ, ये जो मिठाई विठाई की तस्वीर थी कि अपने लगारी साहब ने भी अपने गांव के मिठाई की दुकान की तस्वीर
लगाई
यहाँ पे, आप भी देखो।
ये तो अच्छी सी, हाँ ये जलेबियां और जो है बड़ी खतरनाक किस्म की जलेबियों की तस्वीर जो है मुझे नजर आ रही है। और जो है बहरहाल एक चीज बड़ी दिलचस्प है वो ये है कि अक्सर ये होता है कि सुबह सवेरे जो प्रोग्राम हम करते हैं तो सुबह सवेरे खैर बहुत भूख नहीं लगी होती तो खाना पीने के जी नहीं चाह रहा होता, लेकिन ये तस्वीर या ये तस्वीर जो एम खान लगारी साहब ने भेजी है तो इसके बाद जो है वो भूख लगनी शुरू हो जाती है।
इसके बाद हम लोग कुछ इंतजाम करना होगा, प्रोग्राम भी चले खत्म हो रहा है तो इसमें बेहतर है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता हालात तब्दील होने लगते हैं तो यकीन हम लोग के लिए बेहतर नहीं है, आप लोग बस मजे लेंगे इससे ज्यादा
बिल्कुल सही। बहरहाल जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास जो है इंशाल्लाह कल हमारे साथ होंगे, बालों का गिरना और उसके इलाज और वजूहात के बारे में इंशाल्लाह हम डॉक्टर से बात करेंगे।
हफ्ते का मौजू हम लोगों का एक सही रहबर का चुनना है,
बिल्कुल बहुत ही अहम मौजू है, सिर्फ ये मौजू नहीं है ये एक जिंदगी का सवाल है, इस पर सोचिए और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होइए। अपना ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए मुझे हसन जैदी को प्रोग्राम सुबह जिंदगी से इजाजत दीजिए,
खुदा हाफिज़।